मैं रोती हूँ कभी कभार, करती वही हूँ जिसका हुक्म दिया गया है। मेरे लिए दुआ करो, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, मेरे कामों के लिए नहीं, क्योंकि यीशु ने जो किया है उसी का असर होने वाला है, मेरे तर्ज अमल का असर नहीं हो सकता। आप पर भी यह मुकाशिफा होगा कि आपके काम का कोई असर नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, चाहे आप कोई हिमाकत के फेरे पर फेरे लगाते रहें, बयाबानों में भटकते रहें, यहां तक कि वादा की गई सरजमीन की सरहद पर पहुंच जाए। खुदा कहता है ठीक है, मेरा रास्ता या तुम्हारा रास्ता, मेरे रास्ते पर एक और फेरा लगाओ, उस पहाड़ के गिर। ये तब होता है जब आप खुदा के अहकामात से ऊब जाते हैं, इसलिए ऐसी बातों पर कान धरना चाहिए। अब अगर कोई आपको चोट पहुंचाए और मामले को आप अपने हाथ में लेकर बदला लेना चाहें, जवाबी कार्रवाई करने की सोचें या अपने दिफा की ठाने और खुदा को इस मामले में मजबूर पाए, तब आप अपने आप से कहते हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त फौरन बाइबल से रुजू करें और इब्रानियों के बाब 11:30 देखें, जिसमें कहा गया है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं लूंगा। खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। रोमियो बाब 12 में ताकीद की गई है कि अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे खुदा के सुपुर्द करो। जब आप डगमगाने लगे तो इन आसमानी आयात की तरफ ध्यान दे, आप अहकाम खुदावंदी से मुजादिला करें। इस जंग में हमारे हथियार नफसानी नहीं होते, बल्कि खुदा के फजल से ये जबरदस्त हथियार मजबूत किले को भी जमीन बोस कर देते हैं, उन दलीलों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें खुदाई मालूमात से ज्यादा बुलंद साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्क इसमें है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, असल फर्क इसमें है कि मुझे क्या चाहिए। ये करना आसान है, नहीं, क्यों नहीं, तुम लोग समझ रहे हो, रवानी की बात अलग है। सच बोलना कुछ आसान नहीं होता, ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अपने तौर पर कुछ करना चाहे तो ये और भी मुश्किल होता है। जबूर 37:5 में है, अपनी राह खुदा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो बातें किसी और के लिए हैं। आप खुलूस के साथ अपने रास्ते पर चलिए। मैं तो सिर्फ काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूं। सर बुलंदी के लिए धोखाधड़ी कभी मत करो, बेईमानी ना करो, तबलीग करो। हकीकी सरफराजी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब, ना शुमाल और ना जुनूब से, मिलती है तो खुदा की जात से। खुदा पर कामिल यकीन रखेंगे तो फरोग हासिल होगा, लेकिन तरक्की के लिए समझौता करेंगे और तरक्की मिल भी जाए तो सही खुशी कभी नहीं मिलेगी। हमारी बातें सुनकर आज समझौता करने से तौबा कर लीजिए। आपका जमीर जिस बात पर आपकी मलामत करे उसका जवाब नहीं ढूंढिए। मैं फिर से दोहराऊंगी, जमीर की बात को मत टालिए। अगर कभी कोई बात खुद पर नहीं जचती, फिर भी खुद को यह कहकर समझाते हैं कि दूसरे भी ये कर रहे हैं तो हमने कर लिया, तो उसमें क्या हर्ज है, दूसरे का फेल जो भी हो उससे हमारा क्या लेना देना। खुदा के सामने दूसरों को नहीं बल्कि आपको सिर्फ अपना हिसाब देना होता है, सिर्फ अपना हिसाब, और हिसाब का दिन जल्दी ही आने वाला है। मैं नहीं जानती कि यीशु मसीह कब जाहिर होंगे, अकबत की बात बताना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं और इसलिए कह सकती हूं कि वक्त बहुत बहुत ही तेजी से गुजरता है। यीशु के जाहिर होने से पहले ही हम सबों का खात्मा हो जाएगा और हमें इसकी खबर भी नहीं होगी। लिहाजा हम लोग रोजाना अपनी तैयारी करते रहें। आमीन। रोमियों के बाब 8 आयत 17 में है, अगर हम लोग उसके बंदे हैं तो उसके वारिस भी हैं। खुदा और यीशु दोनों के वारिस उनके साथ उनके वर्से के शरीक होंगे, ये सुनकर सभी दावेदार बनना चाहते हैं। लेकिन दावा करने से पहले आखिरी आयत भी सुन लीजिए। हमें उनकी कामयाबियों में ही नहीं बल्कि मुश्किलात में भी शरीक होना होगा। हम लोग खुदा के वारिस और यीशु के मुश्तरका वारिस हैं। यीशु ने तकलीफें सहकर और अपनी कुर्बानी देकर हमारे लिए उन्होंने जो दौलत हासिल की, उस दौलत के हम हिस्सेदार बनते हैं। खुदा की मेहरबानी हमें सलीब पर नहीं चढ़ना पड़ा। खुदा की इनायतें हमें मुजरिम और मातूब बनकर नहीं रहना पड़ा। कुछ बातों की वजह से हमें कभी सजा नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों को महफूज रखने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु ने खुद को कुर्बान कर दिया था। लेकिन दूसरी बातों की पादाश में हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, और ये चंद चीजें वही होंगी जिसका साबिका उन्हें बाग में पड़ा था। यहूदा ने उनके साथ क्या सलूक किया था, जानते हैं क्या किया था? यीशु के नक्शे कदम पर चलेंगे तो आपको भी यहूदा का बोसा मिलेगा। यहूदा का बोसा क्या है? दोस्त की फरेबकारी। और ऐसे फरेबियों को आप आखिरी दम तक प्यार करेंगे। यीशु ने जैसे सलीब पर चढ़कर ईजा पहुंचाने वालों के हक में दुआएं की, उसी तरह आपको भी अपने ऊपर जुल्म ढाने वालों के लिए दुआ करनी होगी, या वो करना होगा जो स्टीफन के संसारी के वक्त किया था। बाग में यीशु को इतनी जहमत इसलिए उठानी पड़ी कि उन्होंने खुद की मर्जी से दूर जाना चाहा था, जबकि उन्हें मालूम था कि खुदा की मंशा को टाला नहीं जा सकता। बाइबल के मुताबिक उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि उनके खून की बड़ी बड़ी बूंदे निकल पड़ी। तब फरिश्तों ने आकर उनकी खिदमत की और हिम्मत बंधाई थी। हमें इतनी सख्तियों से तो नहीं, मगर सही फैसला करना होगा, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा हुक्म खुदावंदी से भागता है तो दूसरा हिस्सा मानता है कि हमें खुदा के हुक्म से रुगर्दानी नहीं करनी है। ऐसा वक्त आता है जब हमें खिलाफ मर्जी कुछ करना पड़े, और इसकी वजह से हमें वो चीज मिल सकती है जिसकी हमें चाह भी होगी और जरूरत भी। गर्ज ये है कि दश्त और बयाबा की खाक छाननी पड़ेगी, वादे वाली सरजमीन तक पहुंचने के लिए हमें यह करना होगा, मगर कितना और कब तक इसका दारोमदार खुद हम पर है। उस सरजमीन की सरहद तक लाखों बार पहुंचने के बाद भी कोई गलत फैसला करे और उस पहाड़ का तवाफ करना पड़े और वापस आए तो फिर वही जवाब मिले। आप में से कितने मेरी इस बात को मानेंगे कि यह हम पर है, दश्त में कब तक भटकते रहे? हालेलुया! जज्बात क्या है? वही जो हमें उकसाते हैं, हमें भटकाते हैं, अपने साथ उड़ाई लिए चलते हैं और अपनी पैरवी करने के लिए कहते हैं। जज्बात की तारीफ में जोरदार रद्द अमल के इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। इसकी वजह से जिस्मानी तब्दीली भी रूनुमा हो सकती है। आपके अंदर हलचल और घबराहट की लहर चल सकती है। जज्बात का दूसरा नाम महसूसात है, जैसे गुस्से और खुशी का एहसास। ऐसे जज्बात तारी होते ही आपके चेहरे का रंग और तासुर बदलने लगता है। आपके दांत बजने लगते हैं, आप जिद पर उतर आते हैं और आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। खून का दबाव बढ़ जाता है, जबान खुश्क होती है, कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। महसूसात